मैं जानती हूँ अगर मैं कह दूँ कि मैं आ रही हूँ तो तुम।
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं छुपता फिरूं।
मैं सोच रही थी कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा होगे, लेकिन ऐसी कोई बात मुझे लग नहीं रही है। तुम तो
शर्मिंदगी किस बात की?
अच्छा, उस बार वो प्री नर्सरी स्कूल वाला सीन क्रिएट किया, मैंने कुछ नहीं कहा था, और इस बार हॉस्पिटल में भी तुम।
प्री नर्सरी स्कूल? मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो। तुम बेवजह मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो।
ठीक है, अली कहाँ है?
ठीक जगह पे है।
उसे मेरी जरूरत है, उसका ऑपरेशन हुआ है। अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो फिर से ब्लीडिंग हो सकती है।
मुझे उसका ध्यान है।
तुम उसका ध्यान रखोगे? ऐसे ही घर में है या हॉस्पिटल में, ये बताओ। अरे, तुम उसकी जिंदगी से खेल रहे हो।
अली मेरा बेटा है और मैं चाहता हूँ कि उसे मैं अपने पास रखूँ, और इसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है।
वो मेरा भी बेटा है।
ठीक है, लेकिन तुम उसका ध्यान नहीं रख सकती।
तुम रख सकते हो?
बेशक, तुमसे बेहतर रख सकता हूँ।
जनाब डॉक्टर सुहेल कामयाब, तुम्हारी फैमिली वाले नहीं चाहते एक बीमार बच्चे की वहां पे केयर की जाए, और ये बात तुम बेहतर जानते हो। अब तक तुमने जो भी किया मैंने चुपचाप बर्दाश्त किया, लेकिन अली की जिंदगी को मैं लुका छुपी का खेल बनते नहीं देख सकती।
ये लुका छुपी का खेल नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, 100% कानूनी। जब भी मेरे पास वक्त होगा तो मैं दिखाने के लिए ले आया करूंगा। वैसे भी तुम बहुत बिजी रहती हो डॉक्टर साहिबा, आपके पास तो और भी बहुत सारे काम हैं। अली को माँ चाहिए, साइंटिस्ट नहीं। तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती, अगर चाहो तब भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है।
एक सेकंड भी अली के बारे में लापरवाही नहीं बरतते, वो हमारे घर बहुत आराम से रहेगा।
अब मैं अली को तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा।
मैं सोच रहा था डॉक्टर ईरान मनीष अभी तक आई नहीं है।
आ चुकी है, 2 घंटे से खुद को कमरे में बंद के बैठी है। सलाम।
सलाम।
अरे, मुझे पता ही नहीं लगा तुम लोग कब आए।
सच बात तो यह है कि आज़र को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी।
मैं यहाँ तुम्हारा दिल बहलाने नहीं आई हूँ, इसलिए कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का अंदाजा नहीं है। मैं माँ नहीं हूँ ना। हाँ, इतना समझती हूँ कि एक जगह बैठने और सिर्फ सोचने से काम बनने वाला नहीं है।
सोहेल को मैं कॉलेज लाइफ से जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मामला सॉल्व हो जाएगा। मैं अंदर आ सकता हूँ?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए।
मैं बाहर था, मैंने कुलिक से सुना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हुई।
क्या हो गया जो सबको मेरी इतनी फिक्र होने लगी?
अगर तुम कहो तो तुम्हें एक ऐसा वकील बताऊं जो तुम्हारे अगले पिछले सब हिसाब बराबर कर देगा।
नहीं, मुझे हमदर्दी की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे बारे में बहुत बातें हो रही हैं।
मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रहा था।
मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी।
डॉक्टर साहब, मायदा साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब्ड है, इसलिए चली गई।
डॉक्टर पेमेंट इमरजेंसी, डॉक्टर पेमेंट इमरजेंसी।
उसने डॉक्टर पेमेंट के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। डॉक्टर पेमेंट मायदा को चाहते हैं, ये सब जानते हैं।
शायद मायदा के दिल में सोहेल के लिए अभी भी जगह बाकी है।
यकीन करें, मैं और सारे साथी इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह थोड़ी सी फैक्टर 8 इंपोर्ट कर लें, चाहे इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़े, मगर कुछ दिनों के लिए ही सही, ये क्राइसिस खत्म हो जाए। जी जनाब जी, मुझे पूरी उम्मीद है, आप इत्मीनान रखें, मैं आपको एक एक पल अपडेट करता रहूंगा। खुदा हाफिज। सुनो कशेफी, तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें इन हालात में बाहर जाने की परमिशन नहीं दे सकता मैं। सिचुएशन समझ रहे हो ना तुम?
हाँ मैं समझ रहा हूँ कि फैमिली के जाती मामलात को मेरी प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ईरान मनीष की रिसर्च का मेरे बाहर जाने से क्या लेना देना है?
लेना देना यह है कि मैडम ईरान मनीष तुम्हारी ही सिस्टर इन लॉ हैं और अगर तुम चाहो तो इस मामले को बहुत आसानी से हल कर सकते हो। मुझे कंपनी के फायदे की नहीं पड़ी है, मुझे लोगों की परेशानी का ख्याल है। इन्हें कैसे इस क्राइसिस से निजात दिलाई जाए?
डॉक्टर साहब आप तो जानते ही कि अगले हफ्ते मुझे बाहर जाना ही जाना है। अगर मेरी वाइफ ने अगले दो हफ्तों में वहाँ रिपोर्ट नहीं की तो उसका काम खराब हो जाएगा। और हाँ मेरे रिफ्रेशर कोर्स का टाइम भी पूरा हो गया है। आपको लगता है कि मैं इसके लिए कैंसिल कर दूंगा?
कहाँ सब कैंसिल हो गया। देखो कशेफी, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम हमारे लिए काम करते हो, मेरी जिम्मेदारियों को जानते हो तुम। मैं तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना? इसे सॉल्व करो कशेफी। अगर ये इशू खैरियत से सॉल्व हो जाए तो तुम्हारा रिवॉर्ड भी पक्का है। इसे सॉल्व करो।
मुझे बताओ तो आखिर बात क्या है? जब तक ये पता नहीं था कि जा रही हो तब भी नाराज थी, अब जा रही हो तब भी उदास हो?
मेहंदी के चक्कर में कितना परेशान होना पड़ेगा।
अब क्या हो गया?
हमने उनके लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी।
दिन भर जर्मनी जर्मनी करती रहती हो।
अभी फोन आया था, कह रहे थे नहीं जा सकते।
क्यों?
मुझे क्या पता, कह रहे थे एक मसला है उसे सॉल्व करना है।
बहुत अच्छा है जो नहीं जा पा रही हो। क्या हमारा अपना मुल्क कम है? यहीं रहो, अपना काम करो, तरक्की भी करो। ओके
मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अकेली चली जाऊंगी। मेहंदी को आना होगा आएगा, नाज़नीन को भी साथ ले जाऊंगी।
मीना, मीना,
फोन क्यों काट देती हो, बात क्यों नहीं करती? हो सकता है मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी हो। तुमने एक बार भी पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्यों प्लान चेंज हो गया? मैं तुमसे कम अपसेट नहीं हूं, ये सब तुम्हारी बहन मायदा की वजह से हुआ है।
मायदा का तुम्हारी जर्मनी से क्या लेना देना? कोई और बहाना नहीं मिला था?
सब कुछ ठीक ठाक था। मैं गया था कि छुट्टी ले लूं, लेकिन मुझे बताया गया डॉक्टर जलाल ने मना किया है। पता है क्यों?
सही सही बताओ पूरी बात क्या है।
सुनो, हमारी कंपनी के एमडी डॉक्टर जलायर तुम्हारी सिस्टर मायदा की अधूरी रिसर्च के चक्कर में बर्बाद होने वाले हैं।
आखिर क्यों?
इसलिए कि डॉक्टर साहिबा ने अपनी रिसर्च से जो हलचल मचाई है उसकी जद में हमारी कंपनी भी है। मिनिस्टर ने डॉक्टर जलायर से कहा है कि इस प्रॉब्लम को खत्म करो। वो मुझसे कह रहे हैं कि कुछ करो। तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करती?
मादी मैंने तुम्हारी सब बात सुन ली, मगर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ मेरी रिसर्च कैसे इनकम्प्लीट और बेसलेस हो सकती है। बहुत मेहनत की है, मैं उसके एक एक वर्ड को जस्टिफाई कर सकती हूँ। और मादी ये सिर्फ दावा नहीं है, तुम तो समझो।
यही बात है, न सिर्फ तुम बल्कि कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि एक इनकम्प्लीट रिसर्च से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैक्टर 8 बना सकता है, समझी? इस हिसाब से ये सिर्फ दावा है।
मैं ये कह रही हूँ कि अगर वाकई में तुम अपने मरीजों के लिए इतनी परेशान हो तो कुछ करते क्यों नहीं उनके लिए?
एक इंटरव्यू दो और उसमें अपने दावे वापस ले लो। इस तरह ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और उसके रेट भी डाउन हो जाएंगे, बीमारों को दवाई भी मिल जाएगी और हम सुकून से काम में लग जाएंगे।
बहुत अच्छे, हम लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये काम नहीं कर सकती।
नहीं, तुम कर सकती हो मगर करना नहीं चाहती, क्योंकि तुम अड़ियल और छक्की औरत हो। तुम्हारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता तुम अपनी जिद से कितने लोगों को बर्बाद कर रही हो।
देखो मीना,
मीना मीना मत करो, तुम बचपन से ही ऐसी हो, हमने हमेशा तुम्हारा लिहाज किया। तुम न्यूज़पेपर में अपना फोटो छापने के लिए हमारा फ्यूचर दांव पर लगा रही हो।
एक्सक्यूज मी,
thank you। मैडम डॉक्टर ईरान मनीष, डॉक्टर सदरा के कैबिन पहुंचे। मैडम डॉक्टर ईरान मनीष, डॉक्टर सदरा के कैबिन पहुंचे।
मेरी प्रॉब्लम वो दवा है। एक आदमी का चैलेंज इंटरनेशनल रिलेशन पे कितना इफेक्टिव हो सकता है। डॉक्टर ईरान मनीष ने चैलेंज किया है कि अगर जरूरी फैसिलिटीज दी जाएं तो वो इस मेडिसिन को प्रोडक्शन की हद तक पहुंचा सकते हैं। बस ये बात है मिस्टर कश्यपी, मैं समझ रहा हूं तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मगर ये काम बहुत मुश्किल है, ये तुम भी जानते हो।
जनाब डॉक्टर सदरा, आप चाहें तो डॉक्टर ईरान मनीष को राजी कर सकते हैं, आपने उन्हें कॉलेज में पढ़ाया है।
किस पे राजी करने की बात कर रहे हो काशिफी? क्या इस टॉपिक पे पहले बात नहीं की है?
नाराज ना हो डॉक्टर ईरान मनीष, आपको इस मेडिसिन के बारे में सारे हालात का अंदाजा है।
मानती हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, प्लीज मुझे इस बहस में ना डालिए। हालात ऐसे हो गए हैं कि जिन लोगों का इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है वो भी इसके बारे में राय दे रहे हैं।
मैं जानता हूँ मुझे इस पे होने वाली पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर जो लोग इस इश्यू से जुड़े हुए हैं उन लोगों का मानना है कि यह सारा बवाल तुम्हारे एक इंटरव्यू देने से हुआ है। अब कम से कम पेशेंट्स के लिए ही सही, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए।
आप चाहते हैं कि मैं अपनी रिसर्च रोक दूं?
हम क्राइसिस को खत्म करना चाहते हैं।
तुम्हारी रिसर्च से किसी को कुछ नहीं है।
मगर डॉक्टर, हमारी बात तो यही हुई थी।
मिस्टर काशिफी, रिसर्च को नहीं रोका जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि इंटरव्यूज और बवाल खड़ा करने वाले कामों से बचो। बस ये सब मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, बात को समझो।
नहीं, ये काफी नहीं होगा। अगर उन्हें मुतमईन नहीं कहेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा।
really? मैं भी हाथ पे हाथ रखी नहीं बैठूंगी।
मेरी शर्तें कुछ सख्त जरूर हैं। ये काम सिर्फ बवाल को ठंडा करने के लिए है, इसका और कोई मकसद नहीं है। और तुमने हमेशा पेशेंट्स की मदद की है, याद है अपने बेटे की दवा तुम्हें ब्लैक मार्केट से लेनी पड़ी थी, अंदाजा हो गया होगा। सो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो।
आप कह रहे हैं तो ठीक है, मगर जब तक फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच जाती मैं कोई वादा नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं।
ठीक है, हाँ, मगर किसी डिसीजन को किसी और से कहने से पहले मुझसे एक बार मशवरा करना।
जी, इजाजत है।
अभी गई नहीं तुम?
नहीं जनाब। महती, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि फैमिली मेंबर होने के बावजूद तुम मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करोगे।
तुम्हारी नजर में तुम्हारा काम बहुत अहम है तो क्या मेरी नजर में मेरा काम अहम नहीं है क्या? तुम्हारी वजह से मुझे ड्रग्स एंड मेडिसिन की कंपनी में अपॉइंट किया गया है और अब मैं अपना काम नहीं छोड़ना चाहता। मैं जो कर रहा हूं वो मेरी ड्यूटी है। बाय।
हेलो जी, बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ, क्राइम ब्रांच से। मैंने अभी पिछले दिनों मिस्टर शाहरम को फोन किया था, मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए दवा चाहिए थी। मार डाला गया? मैं पहुंच रही हूँ।
जाओ, मैं भी देखूं क्या करते हो। जरा सी हिम्मत दिखाओगे तो बस चांदी हो जाएगी अपनों की। जाओ।
मैं नहीं जा रहा, मेरे को डर लग रहा है।
हम यहाँ किस लिए हैं? डरो नहीं, जाओ जाओ यार।
मैडम ईरान मनीष
जी,
अपने बेटे के लिए दवा मिल गई आपको?
हाँ।
अच्छा हुआ आपका बच्चा ठीक है, मेरी बेटी को भी फैक्टर 8 चाहिए था।
क्या हुआ?
पता है अब उसकी क्या हालत है, पैरालाइज्ड हो गई है वो, चल फिर नहीं सकती है वो। अब बताओ क्या करूं मैं?
मुझे अफसोस है मगर मैं आपका मतलब नहीं समझी, आप मुझसे क्या चाहते हैं?
बदला लेना चाहता हूँ मैं।
मुझसे?
हाँ तुमसे। मैं रातों रात अपनी बेटी को तुम्हारे पास लेके आया, तुमसे रिक्वेस्ट भी की थी, मगर तुमने ना जाने उसके साथ क्या कर दिया। बताओ।
आपको गलतफहमी हो रही है।
नहीं, वो तुम ही थी मैडम।
मैं उस हॉस्पिटल में काम करती हूँ मगर फिजिशियन नहीं हूँ मैं।
तुमने बच्चा समझा हुआ है क्या मुझे, है? पागल बनाना चाहती हो मुझे?
मेरे यकीन करो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है।
मुझे अपना बदला लेना है, मैं तुम्हें अपाहिज बना के छोड़ूं। तुम कहीं भाग के नहीं जा सकती, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मैडम, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चे में और दूसरों के बच्चों में कोई फर्क नहीं है।
अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती है या हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर्स की क्या गलती है?
ठीक है, तुमने अपनी बात कह दी, अब मैं बताता हूं कहां हो।
क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे इसे क्या हुआ है?
देखा तुमने क्या किया इसके साथ? देखो मैडम भागने ना पाए।
ओके।
खड़े हो जाओ। सब गड़बड़ कर दी तुमने, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम।
ना, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मेरा काम नहीं है।
किसी काम के नहीं हो तुम। जाओ उसका काम तमाम कर दो।
अब तक जो भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, आप मुझे फंसा रहे हैं।
ये क्या किया मैडम आपने, इसने क्या गुनाह किया था?
मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ, इसे छुआ मत।
क्या एम्बुलेंस बुला रही हो? पहले उसके सिर पे मारा, फिर उस पे गाड़ी चढ़ा दी, मैं उसका गवाह हूँ।
हॉस्पिटल लेके चलते हैं, सर में चोट आई है।
ना, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, फंसाओ मत।
अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप? मैं फोन करता हूँ।
कहीं देर ना हो जाए, धीरे धीरे लेके चलते हैं।
मैं फोन करता हूँ, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी।
एम्बुलेंस को छोड़ो, देखो ये लेडी भाग ना जाए।
चलो उठाओ उसको।
सब तुम्हारी वजह से हुआ है, देखो मेरी क्या हालत हो गई है।
खुद तुम्हारी गलती है, नर्सरी स्कूल में भी काम खराब किया था और यहाँ भी।
अगर मैं फंसा या पकड़ा गया तो सब कुछ बता दूंगा, ये समझ।
उसकी नौबत नहीं आएगी।
डॉक्टर इरान मनीष, डॉक्टर हुसैन ने कहा है कि इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाए, आप भी जाइए।
ओके, थैंक्स। हेलो मीना, मेरे से एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी को लग गई है, पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, पापा को जल्दी हॉस्पिटल भेजो।
सर में चोट आ गई, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा।
बच जाएगा ना डॉक्टर पेमन,
इंटरनल ब्लीडिंग का ज्यादा खतरा है, अभी कुछ कह नहीं सकता।
अभी कैसी हालत है?
अभी कुछ नहीं कहा जा सकता पापा, कोमा में है।
उसके घर वाले नहीं आए?
इन्फॉर्म कर दिया है, रास्ते में।
बेहतर है तुम घर चली जाओ, तुम्हारे भले की कह रहा हूँ मायदा, उसके घर वाले आएंगे, बवाल करेंगे।
मैं नहीं जा पाऊंगी मादी, वो मुझे यहाँ से निकलने नहीं देंगे, प्रॉब्लम है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं डॉक्टर सदरा से बात कर लेता हूँ, तुम बड़े आराम से निकल जाओगी।
ये सही कह रहा है, बेहतर है कि तुम घर चली जाओ, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं।
हाँ मायदा, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, चलते हैं।
मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है, मैं इसे पहचानता हूँ। खैर चलिए चलते हैं।
मैं मायदा के पास जा रही हूँ, चलो बेटा। हेलो हेलो डॉक्टर, क्या हुआ, होश में आया वो? मर गया?
हॉस्पिटल से फोन आया था, क्या हुआ?
वो मर गया।
कौन? अंदर आ जाओ। मादी है ना?
अजीब फैमिली है, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये वही आदमी था जिसे मैंने बताया था।
कौन?
वही जिसने मिनिस्ट्री के सामने जलार पर हमला किया। फैमिली भी तो उसी की तरह है, एक भाई है, वो तो उससे भी बदतर है।
मैं समझा नहीं कि तुम्हारी कंपनी के डायरेक्टर का मायदा से क्या लेना देना है।
लेना देना ये है कि वो आदमी जो मर गया है उसका एक हीमोफीलिया का पेशेंट है, जिसे फैक्टर 8 नहीं मिल सकी, इसीलिए वो पैरालाइज्ड हो गया। समझ रही हैं डॉक्टर साहिबा, ये उसी इंटरव्यू का असर है जिसे मैंने कहा था और आप नहीं मानी। मेरे ख्याल से वही आदमी है जिसने मिनिस्ट्री के सामने मालूमात की होगी कि डॉक्टर ईरान मनीष कौन है, इसीलिए नौबत आ गई।
कौन सी नौबत? तुम तो वहां थे नहीं मादी, उसकी खुद की गलती थी, वो बिला वजह मुझसे उलझा और उसके बाद मुझे पता नहीं कब उसने अपने आप को मेरी गाड़ी के आगे डाल दिया।
मैं नहीं कह रहा हूँ मायदा, गवाह कह रहे हैं। आखिर मुल्क में कानून भी तो कोई चीज है मगर नहीं, समझे? मगर वो तो बदला लेने की बात कर रहे हैं।
बदला? कैसा बदला? क्या मायदा ने जानबूझकर उसको मार डाला? उन्हें राजी करना पड़ेगा।
वो तो ठीक है, लेकिन अभी उनसे कोई बात नहीं की जा सकती। समझ लीजिए, सोच समझकर ही कदम उठाना पड़ेगा।
तुम तो कानून जानते हो, तुम ही कुछ करो, देखे क्या होता है।
वो तो ठीक है, फौरन कुछ करना मुश्किल है।
तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं,
अभी हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, जब तक वो रिलैक्स ना हो जाए।
मैं खुद हॉस्पिटल जाके उनके घर वालों से बात करूंगी। ना आपा, इसकी बात मान लो, माती को कहने दो, हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते, बैठ सकते हैं क्या? आखिर कुछ करना होगा हमें।
ठहरो मायदा, साथ चलते हैं।
पापा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें कुछ करना चाहिए।
तुम तो जानती हो मीना, मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगा।
मुझे भी यही उम्मीद है।
हाँ, डॉक्टर जलाल ने मेरी छुट्टी सैंक्शन कर दी है, अब हम जर्मनी जा सकते हैं।
मेहंदी, तुम ये सोच रहे हो कि मैं घर वालों को इन हालात में छोड़कर चली जाऊंगी?
नहीं, खुदा ना करे, तुम्हारे घर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो तुम चले जाते?
नहीं। जी सलामुअलैकुम, बोलिए। मगर हमने तो सिक्योरिटी जमा करा दी है और वो जमानत पे आजाद हैं। ठीक है जनाब, खुदा हाफिज। क्राइम ब्रांच से था, वो कह रहे हैं कि मायदा फौरन उनके ऑफिस पहुंच जाए।
हाँ यही है।
आप वहां उस दिन क्या कर रही थी?
मैं वहां फैक्टर 8 की तलाश में गई थी।
क्या आप उससे पहले भी मिली थी?
ना, मैंने उसे पहली बार देखा था। कह रहा था उसका बेटा भी हीमोफीलिया का पेशेंट है।
जरा एक्सीडेंट के बारे में बताएं।
मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ इस बारे में।
ठीक से डिटेल में बताएं, समझी?
देखिए जनाब, मैं उस दिन पार्किंग पहुंची, अचानक मैंने उस आदमी को देखा। वो मुझसे लड़ने लगा। वो सोच रहा था कि उसके बच्चे के पैरालाइज्ड होने में मेरी गलती है। मैंने उसे समझाया कि मेरी गलती नहीं है। उसने मुझे चाकू दिखाकर डराने की कोशिश की, लेकिन यकीन करें आप मेरा, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, वो समझने को तैयार ही नहीं था। अब मैं क्या करती? अपने बचाव के लिए जो कुछ मैं कर पाई वो मैंने किया। मैं बस उसके बाद जो हुआ आपको मालूम है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या सुनना चाहते हैं।
इसे पहचानती हैं क्या?
मैंने कभी कभी नासिर खुसरो में से दवा ली है।
फैक्टर 8?
जी।
क्या इसी से ही ये दवा लेती थी?
मेरे बेटे को हीमोफीलिया है।
लास्ट टाइम इसे कब देखा था?
3-4 दिन पहले एक मिठाई की दुकान पे इससे मैंने दवा ली, मगर उसके बाद से मुझे उसका कोई पता नहीं है।
3 लाशें, 3 मर्डर, सब एक ही फाइल में है, और किसी ना किसी तरह से इन तीनों से आपका ताल्लुक है।
3 मर्डर? और मेरा इन तीनों मर्डर से क्या ताल्लुक है?
एक लेडी डॉक्टर जो खुद ही कह रही है कि उसका बेटा हीमोफीलिया का पेशेंट है, अचानक एक अजनबी यंग मैन से नासिर खुसरो में मिलती है, और फिर इत्तेफाक से उसका बेटा भी हीमोफीलिया का पेशेंट होता है, और एक दिन अचानक ये आदमी उस हॉस्पिटल की पार्किंग में दिखाई देता है और बाई चांस मारा जाता है। ठीक 2 दिन पहले उससे भी कम टाइम में 2 मर्डर और होते हैं, जिनमें से एक का नाम है मंसूर और दूसरे का नाम है शाहरम। एक चीज इन तीनों को जोड़ती है डॉक्टर साहिबा, और वो है फैक्टर 8। समझ गई डॉक्टर साहिबा? फैक्टर 8।
मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ।
आपने उस दिन 10 बार से भी ज्यादा शाहरम के मोबाइल पे फोन किया। आप कोई सफाई देना पसंद करेंगी? कोई अहम खबर उस दिन चाहती थी क्या?
मैंने उसे हॉस्पिटल के लिए दवा खरीदने के लिए फोन किया था। आप हॉस्पिटल के डायरेक्टर से पूछ सकते हैं। मैं उसी को सिर्फ पहचानती थी बस। जनाब, आपके बताने से पहले मुझे ये भी नहीं मालूम था कि शाहरम का मर्डर हो गया है। मुझे कुछ नहीं मालूम था। मिस्टर मंसूर को मैं बिल्कुल नहीं पहचानती, सच।
मैडम, आपका ये केस कोर्ट में जा रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए कोर्ट के ऑर्डर क्या होते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा डॉक्टर साहिबा कि मैं इन सारी बातों को ठीक ठीक लिख दूं।
तुम वहां क्या कर रहे थे? तुमने तो कहा था कि तुम उसे बाहर निकालोगे।
हाँ, मगर बहुत हैवी सिक्योरिटी मनी मांग रहे हैं। हमारे बस की बात नहीं है, घर के डॉक्यूमेंट्स भी बैंक में रखने पड़ेंगे।
कितना मांग रहे हैं?
500 मिलियन।
500 मिलियन?
ये तो तब है जबकि अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है।
तो कल तक मायदा को अंदर रहना पड़ेगा?
नहीं पता।
गाड़ी का अभी तो कोई काम नहीं है।
काम है मुझे, कहीं जाना है। क्यों?
ठीक है, मेरे लिए टैक्सी मंगा दो।
मीना, कहाँ जाना है?
सुहेल सिक्योरिटी मनी अरेंज कर सकता है।
मायदा को पता चलेगा तो वो नाराज होगी, ऐसा मत करो।
डरो नहीं, मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ, बस पापा को ना पता चलने पाए।
मैडम या सर? ओहो इमरान मनीष, इस तरफ कैसे आना हुआ?
सलाम।
मैंने मायदा से कह दिया था कि अली मेरे पास रहेगा।
मुझे यकीन है कि आप सब लोग ये खुद सॉल्व कर लेंगे, मैं अली के लिए नहीं आई हूँ।
फिर क्यों आई हैं?
नहीं मालूम मैंने यहाँ आके ठीक किया या नहीं, पर मैं आ गई यहाँ, यानी कुछ और मेरे दिमाग में नहीं आया। सुहेल, मायदा से एक एक्सीडेंट हो गया है, वो आदमी मर गया है, इस वक्त वो जेल में है। घर वाले कह रहे हैं कि उसने जानबूझ के मार डाला। कुल मिला के मायदा सही पोजीशन में नहीं है।
क्या मतलब? मायदा ने ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है।
हमें भी यकीन नहीं आया, सुनने में आया है कि पहले दोनों में तकरार हुई, फिर मायदा ने उसे मारा।
ये आदमी कौन था?
मुझे भी नहीं पता। हाँ, उसका एक लड़का हॉस्पिटल का पेशेंट है, पैरालाइज्ड हो गया था। वो समझते हैं कि मायदा की वजह से ये सब हुआ।
ये सब कब हुआ?
कुछ दिन हुए। केस लंबा चलेगा, हमारा घर भी बैंक में रहन है, सिक्योरिटी के तौर पे उसे नहीं मान रहे। इस तरह जब तक केस सॉल्व नहीं होता मायदा को जेल में ही रहना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं कह रहे हो?
क्या कहूं, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है।
तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसे हैं, तुम अगर चाहो तो कर्ज के तौर पे हमें पैसे दे दो, मायदा को छुड़ा के बाद में ये पैसे तुम्हें लौटा देंगे।
फिर अब यहां क्यों आई हो तुम?
तुम तो मायदा को अच्छी तरह से जानते हो, इम्पॉसिबल है वो किसी से मांगे, स्पेशली तुमसे।
जी नहीं।
उसकी मदद करोगे, हाँ या ना, जल्दी बताओ।
ना।
हेलो मेहदी, तुम ठीक कह रहे थे, उसने मना कर दिया।
ठीक है, तुम परेशान मत हो, कोशिश कर रहा हूं मैं। बात आगे जाने दो, मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी पापा के साथ मैं कहीं जा रहा हूं। ठीक है, खुदा हाफिज।
मीना से नहीं बताया, कम से कम मुझे बता दो क्या करने जा रहे हो।
एक आइडिया आया है, पता नहीं होता है या नहीं, मेरे ख्याल से इस वक्त डॉक्टर सदरा हमारी मदद कर सकते हैं, उनके पास चलते हैं।
मैं जानता हूं कि आप उसके डॉक्टर नहीं थे, मगर आपको तो डॉक्टर साहब उसकी कंडीशन का पता था। मैं चाह रहा था कि थोड़ा डिटेल से उसके बारे में बताएं।
जब उसे यहां लेकर आए तो मुझे लगा कि सर में चोट आई है, मैंने फौरन डॉक्टर हुसैन को बताया, उन्होंने पूरी कोशिश की, मगर तब तक देर हो चुकी थी।
आपने मरने से पहले कभी उसको देखा था?
मुझे याद नहीं, हम लोग दिन भर बहुत से लोगों को यहाँ देखते हैं, पता नहीं शायद।
डॉक्टर ईरान मनीष यूनिवर्सिटी में मेरी स्टूडेंट थी, समझे, यहाँ भी मेरी सुपरविजन में है, मेरे साथ। मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ।
हमने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से कहा था कि पैसा अरेंज करके मायदा की जमानत कर लें, मगर नहीं हो सका। पता नहीं आपको उसकी रिसर्च पर कितना इत्मीनान है। मेरा मतलब था कि आपकी नजर में वो वैल्यूबल है तो ये बेहतरीन मौका है उसे आजाद कराने का।
एक्सक्यूज मी, देखिए सर, दरअसल इनका मतलब यह है कि उनकी रिसर्च को मिनिस्ट्री या किसी अप्रूव्ड कंपनी को दे दिया जाए, इसके बदले वो उन्हें सिक्योरिटी मनी दे दें ताकि डॉक्टर साहिबा को जल्द से जल्द आजाद कराया जाए।
मिनिस्ट्री उस वक्त तक इन्वेस्ट नहीं करेगी जब तक कि वो पूरी तरह से रिसर्च के रिजल्ट से सेटिस्फाइड ना।
लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आप उन्हें कन्विंस कर दें कि वो इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करें तो मुझे यकीन है कि कंपनीज आगे आएंगी।
लेकिन मुझे इस रिसर्च की डिटेल्स पूरी तरह से नहीं मालूम है।
ये रिसर्च म्यूनिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अप्रूव हो चुकी है, क्या ये काफी नहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे?
ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा रहा तो हमारे मुल्क में हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं इसको देखता हूं कि और क्या हो सकता है, लेकिन अभी कुछ वादा नहीं कर सकता।
एक रिक्वेस्ट है आपसे।
बोलिए।
आप जानते हैं कि ड्रग्स कंपनी ही इस मुल्क में फैक्टर 8 इंपोर्ट करती हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इसको शुरू से नजर में रख के फॉलो अप करें और डॉक्टर ईरान मनीष की रिसर्च को उस कंपनी के लिए सजेस्ट करें तो डॉक्टर जलायर से आपकी दोस्ती और मेरे फॉलो अप की वजह से बात बन सकती है। बिलीव कीजिए सर।
ठीक है, तुम्हारे इस सजेशन पे भी सोचूंगा।
फिर उम्मीद की जा सकती है। मैं कंपनी वापस जा रहा हूं, अगर उसके एमडी से ओके ले लूं तो बहुत अच्छा रहेगा।
पहले घर चलते हैं, खाना खा लो फिर जाना।
खाने के लिए बहुत टाइम है, आपको घर तक छोड़ दूंगा और फिर कंपनी चला जाऊंगा।
थैंक्स।
डॉक्टर सदरा ने भी वादा किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे ताकि मिनिस्ट्री डॉक्टर ईरान मनीष को माली मदद दे।
अच्छा, ये बताइए कि अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या होगा, लॉस कौन भरेगा?
मिनिस्ट्री, ये तो अंडरस्टूड है।
अच्छा, क्या डॉक्टर सदरा रिसर्च को ऑथेंटिक मान रहे हैं?
100%। और फिर म्यूनिक कॉन्फ्रेंस का अप्रूवल लेटर भी तो है।
तुम जानते हो ना कि ऐसा करके मैं अपना लॉस कर रहा हूं, और हमारे एक्सपेंडिचर्स का क्या होगा?
प्रॉफिट की सोचिए, क्रेडिबिलिटी की सोचिए, आपकी मिनिस्ट्री में अच्छी पकड़ हो जाएगी। हम सिर्फ इंपोर्ट करने वाली कंपनी नहीं रह जाएंगे, एक्सपेरिमेंट की लैब के साथ हमारी कंपनी का प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा क्या?
मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं, मैं तो इस प्रोजेक्ट की क्रेडिट की फिक्र कर रहा हूं। यह हमारी कंपनी को जाना चाहिए, ये हमारी शर्त है।
ठीक है, यह भी हो जाएगा।
बताओगे नहीं क्या हुआ?
डॉक्टर जलायर से बात हुई है, किसी तरह उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है, अगर मायदा के रिसर्च को अमली जामा पहना दिया गया तो कंपनी के हक में बहुत अच्छा होगा। ऑलमोस्ट राजी हो गए हैं, लेकिन अगर डॉक्टर सदरा मिनिस्ट्री से माली मदद वाली बात पक्की कर लें तो सिक्योरिटी मनी का अरेंजमेंट हो सकता है और मायदा छूट भी जाती, मगर क्रेडिट हमारी कंपनी के ड्रग्स डिवीजन को ही जाएगा, समझे?
अगर मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल सपोर्ट वाली बात नहीं मानी तो?
अभी डॉक्टर जलायर डॉक्टर सदरा के पास गए हैं बात करने के लिए, देखते हैं कुछ होता है या नहीं।
डॉक्टर एहसान और डॉक्टर तारिमी जल्द से जल्द डॉक्टर सदरा के कमरे में पहुंचे।
हमसे क्या काम है?
पता नहीं मुझे।
मैदा का कुछ पता चला?
उसके घर फोन किया था, अभी भी पुलिस कस्टडी में है।
मैं जल्दी से असल बात पे आता हूँ। एक ड्रग्स कंपनी फैक्टर 8 के नए फॉर्मूले पर इन्वेस्ट करना चाहती है। मैंने मिनिस्ट्री को लिखा है और किसी हद तक उन्हें कन्विंस भी कर लिया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर डॉक्टर ईरान मनीष के साथ काम किया है, क्या आप अब इस प्रोजेक्ट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं? मैं आपके जवाब का मुंतजर हूं, जवाब दीजिए।
डॉक्टर ईरान मनीष तो अरेस्टेड हैं।
ईरान मनीष का प्रोजेक्ट बगैर उनके ये अच्छी बात नहीं होगी।
ये प्रॉब्लम कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगी।
आप लोग बताएं कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने को तैयार हैं या नहीं।
क्यों नहीं, श्योर। ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन पे जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो तो लगभग खत्म हो गया है।
हाँ, वो तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। मैं आपके साथ हूं।
बहुत अच्छे।
सलाम।
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 क्या किया आप लोगों ने? मरने वाले के घर वालों से बात की? उनसे मिले?
अभी नहीं, मादी ने ठीक समझा।
अभी उनसे बात नहीं हो सकती, पहले तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है।
महादी ने इन दिनों बहुत मेहनत की है।
जानती हूँ, आई एम सॉरी मैंने आप सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी।
इतना हमें करना ही था। हाँ, मैंने ये सारी कोशिशें इसलिए की हैं ताकि हालात बन जाएं।
कौन से हालात?
हमारी कंपनी तुम्हारी रिसर्च पे इन्वेस्ट करने को तैयार हो गई है।
कैसे हो सकता है? वो तो मेरे काम से मुतमईन ही नहीं थे।
वो जो हंगामा खड़ा हो गया था उसके वजह से वो लोग डर रहे थे। पास्ट को भूल जाओ, ये एक डील है। कंपनी तुम्हारे लिए सिक्योरिटी मनी देगी, इसके बदले में तुम्हें हमारी कंपनी में अपने प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। डॉक्टर सदरा भी फॉलो अप कर रहे हैं, मिनिस्ट्री से बात कर ली है उन्होंने, प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी ले ली है। अगर तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का एक भी सैंपल तैयार हो गया तो कंपनी अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगी।
इंटरेस्टिंग। फेल हो गया तो क्या होगा महदी?
अगर फेल हो गया तो सारा लॉस मिनिस्ट्री बर्दाश्त करेगी, रह जाएगा सिक्योरिटी मनी का मसला, तो वो वक्त आने तक कोर्ट से डिसीजन आ ही जाएगा।
इस तरह तुम आजाद भी हो जाओगी और अपना काम भी कंटिन्यू कर सकोगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है?
मैं उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ लाया हूँ, और ये कंपनी के साथ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का लेटर है। ड्यूरेशन, पैसा, सब चीज इसमें लिखी हुई है। चाहोगे तो चेंज भी हो सकता है, सोच लो।
इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, मैं अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही।
अगर साइन नहीं होगा तो सिक्योरिटी मनी का अरेंजमेंट कैसे करेंगे?
पार्टनर इस एग्रीमेंट पे साइन के साथ और काम शुरू करने के साथ इस रिसर्च के पूरे क्रेडिट को कंपनी के नाम कर देगा? क्या मतलब? इसका क्या मतलब हुआ?
इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसका सारा क्रेडिट कंपनी को जाएगा।
ये रिसर्च मैंने की है, किसी को इसका क्रेडिट नहीं जाएगा, समझे मादी?
तो फिर वो क्यों सिक्योरिटी मनी देंगे?
समझी मायदा, वो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, समझो।
नहीं पापा, मैं साइन नहीं करूंगी। अगर मैंने ये साइन कर दिए तो इसका मतलब ये है कि ये रिसर्च मेरी नहीं है। वो लोग हमारे हालात से गलत फायदा उठा
रहे हैं। क्या गलत फायदा? मैं ही लाया था कि तुम नेक्स्ट मंथ अपने रिसर्च पर काम करो, उनके हाथ क्या लगेगा? कंपनी इस प्रोजेक्ट से अपना प्रॉफिट चाहती है, इससे अच्छा है कि साइन कर दो, इसी में सबका फायदा है। अगर मायदा ने साइन नहीं किए तो इसे छुड़ाना मुश्किल है।
साइन कर दो, बस यही किया जा सकता है। लो,
सब यही है?
हाँ।
नहीं, मुझे नहीं लगता, उसकी ज्यादातर रिसर्चेस लैपटॉप में हैं।
कच्चा काम करने से क्या फायदा, लैपटॉप भी दे दो।
मीना जाओ ले आओ।
इंशाल्लाह जब वो वापस आएंगी तो इसे कॉपी करके उन्हें दे देंगी और लैपटॉप वापस ले लेंगी। आज इस रिसर्च की अहमियत का पता चला।
लो,
मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मेहदी, फिर कुछ गड़बड़ ना करना।
ये तुम्हारा शुक्रिया है? चार कागज के टुकड़े जिसका अभी कुछ पता नहीं है, एक खजाने की तरह कंपनी ने खरीद लिए हैं। ये मसला हल हो जाए तब हम चलते हैं।